ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर किरण बेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
नमस्कार श्रोताओं, मंथन के इस अंक में आपका स्वागत है। 1 जुलाई 2024 से देश में आपराधिक कानून बदलने वाले हैं। ये कानून क्या हैं, क्या परिवर्तन हुआ है और इससे क्या लाभ हम आप सभी नागरिकों को मिलने वाला है, आपराधिक कानून में जो परिवर्तन हुए हैं वह किस प्रकार के हैं, इनकी आवश्यकता क्या थी और बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में भी उठेंगे हमारे मन में भी कुलबुला रहे हैं और इन पर चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ और देश की जानी मानी महिला साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर किरण बेदी जी को। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार जी। नमस्कार।
सबसे पहले मैम यही समझना चाहेंगे कि जो प्रमुख नए कानून हैं वह क्या हैं और इन्हें लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है।
3 नए क्रिमिनल एक्ट लाए गए हैं जिनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये है जो भारतीय न्याय संहिता है, इसने रिप्लेस किया इंडियन पीनल कोड जो हम लोग सारे जने आईपीसी बोलते थे, उसको पीएनएस कह रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। सिमिलरली ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस कर दिया है पीएनएस एसए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा जो एविडेंस एक्ट जो कहते थे सबूत देने कोर्ट में, उस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस किया। तो 3 ये कानून 100 साल से भी पुराना, जब आप सेक्शन ऑफ लॉ पढ़े उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनकी क्वीन, उनके सॉवरन, ये सब जिक्र हैं और बड़े यूजलेस लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन अभी तक ये हमारे इस कानून में जारी रहे कि पिछले 100 साल से हम लोग इनमें छोटे छोटे कई प्रोविजंस में संशोधन करते रहे, उसको एड ए बी करते रहे, लेकिन होलिस्टिकली संशोधन नहीं हुए तीनों में। और जबकि क्राइम व्यवस्था में कितना ज्यादा फेरबदल आया, आपने देखा है अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हर चीज आप वीडियोग्राफ कर सकते हैं और साइबर क्राइम्स की कितनी ज्यादा हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। ग्लोबल इशू, हमारे कई अपराधी देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उसकी कोई प्रावधान नहीं थी क्योंकि ये ब्रिटिश मेड लॉ था, उसमें ये इश्यूज नहीं थे, तब तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, साथ में उनके पास ये वो चुनौतियां नहीं थी, टेररिज्म की चुनौती उनके पास नहीं थी, उनके पास एक ही चुनौती थी कि हिंदुस्तानी को कैसे दंडित करें। सो ये सादा पीनल कोड, इसीलिए कॉल पीनल कोड, अब ये पीनल कोड नहीं कहलाता, अब ये कहता भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि ये न्याय करने के लिए दिए गए कानून। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी कोर्ट केस को क्लोज कर रहा है, इवन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट केस को विड्रॉ कर रही है या क्लोज कर रही है, तो विक्टिम की सुनवाई होनी बहुत जरूरी है, जो कि पहले नहीं था। सिमिलरली महिलाओं में आपने देखा है कितनी प्रॉब्लम होती थी, आजकल शादी का फैसला किया कि हाँ शादी कर लूंगा, इकट्ठे रहने लग गए, एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुझे प्रमोशन दे दूंगा तो इकट्ठे रहने लग गए, चाहे वो शादीशुदा थी उसके साथ गलत व्यवहार करने लग गए, और उसको ये भी कहा कि शादी कर लूंगा लेकिन उसके साथ शादी नहीं की, ये सारे अब दंड हैं। टेररिज्म का कितना जबरदस्त प्रभाव है, टेररिज्म का कहां था ये पहले, पहले टेरर नहीं था, पहले तो ये था ब्रिटिश द्रोही हो गया उसको लटका दो, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये ज्यादा न्याय करेगी, अब ये न्याय करेगी
जी।
आज की स्थिति को देखते
जी, श्रोताओं सरल भाषा में समझें तो भारतीय दंड संहिता जो औपनिवेशिक कालीन कानून थे अपराध से संबंधित, उनमें परिवर्तन हुआ है और दंड संहिता अब न्याय संहिता के रूप में बदल गई है। नए कानून देश को मिले हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन्हें राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं ये कानून। मैम ने बताया कि जो तकनीक बदली है साथ ही जो मानसिकता बदली है, लगभग 100 वर्षों से जो गुलामों के लिए बनाया हुआ कानून था वह अपने देश में बदलकर हमारा अपना कानून होगा, जिसमें दंडित होने वाले और न्याय पाने वाले दोनों के लिए व्यवस्था नए कानूनों में की गई है। मैम यहां पर हम यह समझना चाहेंगे कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए में प्रमुख कुछ संशोधन को यदि महत्वपूर्ण हम माने तो क्या हम महत्वपूर्ण समझ सकते हैं और किस रूप में ये बदलाव लाएंगे।
जो एडिशनल पनिशमेंट ऐड की गई है जो कि पहले नहीं थी। नंबर वन सेक्शन 4 इसमें आया है इसके कानून में कि कौन कौन सी पनिशमेंट होनी चाहिए। उसमें हमको सबको पता था कि डेथ पेनल्टी होनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी होनी है, लेकिन दो चीजें ऐड हुई, वो है एक तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कि आपकी जो क्राइम प्रॉपर्टी है वो आपकी कॉन्फिस्केट की जा सकती है। सेकेंड भी उसमें कम्युनिटी सर्विस भी है, अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जहां आपको जेल जाने के बदले आपको सेवा में डाल दिया जाए कि जाओ जाके ये सेवा करो इतनी देर जो भी मैजिस्ट्रेट समझते हैं, तो कम्युनिटी सर्विस का पक्ष, ये है रिफॉर्म। तो दो चीजें, एक देखिए सख्त कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर दिया कन्फिस्केट की जा सकती, सेकेंडली ये है कि कम्युनिटी सर्विस ऐड की गई, ये पहली बारी पनिशमेंट में ऐड हुआ है इस संहिता में। उसके बाद सेक्शन 69 एक्ट ऐड किया गया जिसमें है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, जहां शारीरिक संबंध बनाए गए एक महिला से धोखा देंगे कि मैं तो तेरे से शादी करूंगा, तेरा घर बसाऊंगा, सब कुछ करूंगा और वगैरह, लेकिन बदल गया। तो पहले कोई ऐसा कानून नहीं था हमारे पास, ये चीटिंग थी लेकिन चीटिंग का कानून कहीं लिखित नहीं था, ये डिसीटफुल मींस था। अब अगर ये कोई करता है तो 10 साल की इसको सजा है, दिस इज कॉल्ड डिसीटफुल मींस। अब ये जरा बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा विमेन को। तीसरा बड़ा जबरदस्त है वो गैंगरेप, गैंगरेप में भी अब आपने देखा कितनी जबरदस्त एंबुश होता था हमारे सब में, गैंगरेप हो गया तो होता क्या था, अब गैंगरेप में वो भी दंडित होगा जो कि खड़ा होकर देख रहा है, उसको फैसिलिटेट कर रहा है।
देश में न्याय व्यवस्था में अक्सर बहुत लंबा समय लग जाता है और कभी कभी तो इतनी देर हो जाती है कि जो भी परिणाम निकले उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ये जो नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं उनमें क्या न्याय प्रक्रिया तेज करने पर ध्यान दिया गया है और जो हमारी लंबित व्यवस्था है उसमें कोई सुधार के आसार हैं?
हाँ, एक इसको कहा गया जस्टिस ऑन टाइम, इसके बारे में भी कुछ चीजें बिंदु बनाए गए हैं और लागू करने के लिए क्षमता की गई है। नंबर वन 35 सेक्शंस ऑफ द लॉ में टाइमलाइन रखी गई है, इतने सेक्शंस ऑफ लॉ में इतने अपराधों में इतने समय तक फैसला होना ही होगा। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR विद इन 3 डेज ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली, अब आप हिंदुस्तान के किसी कोने से अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं, इसको कहते हैं 0 FIR। मान लीजिए मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ और मैं बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे शिकायत करनी पुलिस को, मैं वहां से पुलिस को फोन कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट कर सकती हूँ और उस पुलिस स्टेशन को कंप्लेन मेरी फॉरवर्ड करनी होगी जहां मेरा रेजिडेंस है या जहां मुझे तफ्तीश करानी है विद इन 3 डेज। हर चीज की सीमा दी गई है इस कानून में, हर एक चीज की, जैसे 35 सेक्शन में सीमा दे दी गई इतनी तारीख तक, इतने महीने तक, इतने दिनों तक ट्रायल खत्म होना है, इससे विक्टिम को ये होगा कि इतने समय तक मेरा केस का फैसला हो जाना है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली FIR करी है तो 3 डेज के बीच में SHO ऑफ द एरिया अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके 3 दिन को उसको फैसला करना है कि मेरा केस FIR रजिस्टर होना है या नहीं होना, और मुझे बताएगा वो भी 3 डेज में, यानी अपना अनलिमिटेड टाइम रखेगा। सिमिलरली फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग, हमारे चार्ज ही नहीं फ्रेम होते थे, केस शुरू होता कचहरी के पास केस चला गया लेकिन वो उसके चार्जेस ही फ्रेम नहीं होते थे कि मेरा दोष क्या है, अब 60 डेज में फर्स्ट हियरिंग से मुझे चार्जेस को फ्रेम करना होगा। फिर फाइलिंग ऑफ द केस विद इन 90 डेज इन केसेस ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लेम डिफेंडर, मान लीजिए कोई भगौड़ा हो गया और भगौड़ा बाहर चला गया, उसकी प्रॉपर्टी भी मैंने फॉरफीट कर दी, एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम डिफेंडर, मेरा केस 90 डेज में फाइल हो जाना चाहिए भगौड़े का, तो वो भी सीमित समय हो। जजमेंट विद इन 45 डेज कंक्लूजन ऑफ हियरिंग, क्रिमिनल केस के कई बार जजमेंट रिजर्व रह जाती है हमारे इस DNS में और BSS में, 45 दिनों में मेरी अगर केस की हियरिंग खत्म हो गई तो अदालत को 45 डेज में अपना कंक्लूजन देना होगा, जजमेंट को देना होगा, नहीं तो कह देते जजमेंट रिजर्व और पता ही नहीं चलता जजमेंट कब तक रिजर्व। और उसमें पहले कानून में लिखा हुआ था जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कोई टाइम सीमित नहीं थी और किसी का साल भी लग जाता था, अब ये 45 डेज में उनको जजमेंट देनी होगी। तो कई चीजों में जस्टिस ऑन टाइम के लिए प्रावधान बड़े अच्छे रखे गए।
पुराना जो औपनिवेशिक सरकार थी, अब जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, यदि हम बिंदुवार लिखना चाहें, नोट करना चाहें, तो प्रमुख प्राथमिकताएं हमारी क्या हैं?
नंबर वन तो पहले बहुत ज्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, कोई घर की सर्च होनी है, कोई गिरफ्तारी होनी है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, पहले तो कागजी कार्रवाई होता था, उसको बदला जाता था और कागज कई बार गुम हो जाता था। अब तो ऐसी बात नहीं है, अब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपने मेरी स्टेटमेंट लेनी है तो वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, आपका मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, ऑडियो भी होगा, विजुअल भी होगा, और वो तो कोर्ट के सामने है। मैं आप बदलूंगी कैसे? एवरीथिंग नाउ इज ऑन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मान लीजिए अपराध होता है तो फोरेंसिक टीम भी उसी वक्त आएगी सबूत लेने, ये नहीं बाद में आएगी, जो सबूत उस वक्त आने चाहिए उसी वक्त आएगी। तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जा रही है, जो भी आप वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं, ऑडियोग्राफिंग कर रहे हैं, ये सबूत है कचहरी के सामने। दैट मीन्स आपने ये नहीं कहा, मैंने तो ये नहीं कहा था, या ये नहीं हुआ था, ये तो पुलिस ने करा, ये कोई और कोई चोरी कर गया, या कोई झूठ बोला गया, ये सारी चीजें वीडियोग्राफ होगी। आप अपने आप फिल्म देख पाएंगे कि क्या हुआ था। आप भी नहीं बदल पाएंगे तो अक्यूज भी नहीं बदल पाएगा। ये इसी को कहते न्याय, न्याय हर के लिए, न्याय जो पीड़ित है और न्याय उसके लिए जिसने गलती की, उसको भी न्याय, ताकि उसका भी गलत स्टेटमेंट ना लिया जाए। तो इट इज नाउ जो हुआ वो कैच करा जाएगा कैमरा में और वो टेक्नोलॉजी। सो नंबर वन वर्सेस जबरदस्त वीडियोग्राफ, फिर आप विटनेस नहीं कर सकते, दूर से कचहरी में नहीं जा सकते, आप वीडियोग्राफी से अपना सबूत दे सकते हैं, आप अपने बयान दे सकते हैं, आपको इतनी दूर ट्रेन से आने की जरूरत नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा आप वीडियोग्राफी से ले लीजिए। तो अब टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा, रिकॉर्ड भी सारे टेक्नोलॉजी में है, कागज चेंज नहीं हो सकता है, वो सारा टाइम रिकॉर्डिंग का भी हो गया। तो हेरा फेरियां जो होती थी, शिकायत लगती थी, विश्वास नहीं होता था कि सच है झूठ है, अब जो है वो कैमरे पे कैप्चर है और वो कैमरे का डॉक्यूमेंट वो सबूत है आपके लिए, फेवर में भी हो चाहे अगेंस्ट हो। ना आप झूठ बोल सकते हैं, ना एक्यूज झूठ बोल सकते हैं, बल्कि कि बोलेंगे बाद में अगर बोलना चाहते हैं, लेकिन आपका कैमरा झूठ नहीं बोलेगा।
जी, यानी पारदर्शिता बढ़ जाएगी तकनीक के इस्तेमाल से और इसका लाभ प्रत्येक पक्ष को होगा। श्रोताओं, हम यह स्वीकार कर सकते हैं। अभी मैम, अब हमारे पास अंतिम सवाल, एक आम नागरिक के रूप में नए कानून को लेकर हमारा क्या दायित्व होना चाहिए और यह कानून जमीनी स्तर पर उतरकर लाभ पहुंचा सके, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
पहले तो इस कानून के बारे ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो कि आपके हक क्या है। और अब कोई भी गिरफ्तारी सीनियर लेवल पर आ गई, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही, इस कानून में लिखा हुआ है कि आप अपने एरिया के सुपरिंटेंडेंट पुलिस के पास जा सकते हैं, वो आपकी सुनवाई करेगा। पहले आप हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास भागते थे, अब आप सुपरिंटेंडेंट के पास जाएं, वो ऑफिसर उसकी ड्यूटी इस कानून में लगा दी गई है आपकी सुनवाई करने की। इसलिए आपको जानकारी है कि मुझे कोई तंग कर रहा है या मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपने एरिया का सुपरिंटेंडेंट पुलिस को जानो, समझो कहाँ बैठता है और वहाँ या बैठती है, क्योंकि आजकल और विमेन पुलिस का बोर्ड बहुत जबरदस्त रोल है, कोई भी विमेन का अपराध विमेन की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता, ना कंप्लेन लिखी जा सकती है, ना सर्च हो सकती है, अब विमेन पुलिस का रोल बहुत अहम हो गया है हर चीज में। तो विमेन के लिए, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए और आपके लिए, आप अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाइए, अपनी बात कहिए, बाकी चीजें उसकी भी ड्यूटी बन गई है, जो नए कानून में प्रावधान आए हैं उनको आगे लेके जाए। कानून की व्यवस्था भी, फास्ट ट्रायल भी हो रहा है, पारदर्शिता भी हो रही है, फिर सीनियर ऑफिसर की जिम्मेवारी भी ज्यादा फिक्स हो रही है, कोर्ट्स की भी जिम्मेवारी बन रही है कि उसको ट्रायल में ज्यादा लाए, और कोर्ट्स भी आएगा कि अपने एविडेंस देखे जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंस है। तो मैं समझती हूँ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल, उसे स्पीड भी होगी, भीड़ भी होगी, छोटे क्राइम के लिए कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। अगर छोटा क्राइम किया तो कचहरी जरूरी नहीं आपको जेल भेजे, आपको सेवा के लिए कोई ना कोई काम दे सकती है कि जाओ समाज की ये सेवा करो इतने दिनों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है।
श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली होंगी जिनका लाभ हमें और आपको उठाना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और श्रोताओं की ओर से मैम आपने बहुत ही उपयोगी और सार्थक जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर किरण बेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094043। 4।